l'inizio e si è venuto per Tesla.
वो तो खुद ही बताएंगे मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं स्थापना काहे की ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराएंगे वो काहे की स्थापना कराएंगे नई दुनिया की तो कौन से ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया तो आई नहीं और ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया तो बताएंगे खुद ही बताएंगे यानी अभी पूरा बताया नहीं है कि नई दुनिया की स्थापना कैसे कराएंगे ब्रह्मा द्वारा और कौन से ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कहते परमात्मा करण करावन हार है और उस ड्रामा का भी पता पड़ गया कलिगंत सचिव आदि से संगम को भी ऊंच मानना चाहिए कलयुग के बाद आता है सतयुग फिर नीचे उतरना होता है स्वर्ग नरक गाया हुआ है किस समय को गाया हुआ है संगम युग में ही स्वर्ग है और संगम युग में ही नरक की अनुभूति करते हैं जो गाया हुआ है क्योंकि तो गायन पूजन यादगार सब संगम युग की है काफी हुए है ना इस स्थूल रूप में मर के नहीं हुए हैं स्वर्गवासी कैसे हुए हैं जीते जी जो मरे हैं पाप के बने हैं माना पूरा श्रीमत पर जो चलते हैं वो जीते जी मरना है वो स्वर्गवासी बनते माना इस दुनिया नरक की में रहते हुए भी स्वर्ग माना सुख का अनुभव करते हैं दुख का अनुभव नहीं करते ज्ञान की पराकाष्ठा से उनका वायुमंडल ही ऐसा बन जाता है उनका वाइब्रेशन ही ऐसा बन जाता है तो ये खास भारतवासी ही कहते हैं स्वर्गवासी हुआ दूसरे धर्म के लोग नहीं कहते क्यों दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं कहते खास भारतवासी ही क्यों कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ पैराडाइज कहते हैं लेकिन ये नहीं कहते कि स्वर्गवासी हुआ मर गया जो मर गया सो स्वर्गवासी हुआ ऐसे विदेशी नहीं कहते हैं खास भारतवासी कहते हैं क्यों हाँ विदेशियों में कुछ न कुछ विचार का अंश है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं विदेशी बन जाती है इसलिए कन्वर्ट होने वाली जो विदेशी आत्माएं हैं वो भल भारत में आकर के ब्राह्मण बनती हैं स्वर्ग में जाएंगी लेकिन जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम देवताओं का उसमें वो देव आत्माएं आती नहीं है क्योंकि पक्की देवताएं नहीं है तो खास भारतवासी ही गाते हैं जो स्वर्ग पधारा सो मरा सो स्वर्ग पधारा क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, कौन से भारतवासी इस बात को खास कहते हैं कि जो मरा सो स्वर्ग पधारा है सचिव के दूसरे जन्म बाद वाले भी प्राचीन होंगे जो दूसरे जन्म में आके जन्म लेंगे 9 लाख के ऊपर तो जब विनाश होगा तो ये 9 लाख आत्माएं संसार में चमकेंगे रोशनी मारेंगे ज्ञान की रोशनी फैलाएंगी इस अंधकार की दुनिया में बाकी 9 लाख से जो ऊपर होंगे वो तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जीते जी मरना क्या होता है क्योंकि वो जीते जी मरते ही नहीं अगर मरे तो 16 कला संपूर्ण बन जाए 84 जन्म लेने वाले पक्के देवताओं की लिस्ट में आ जाए उनमें भी 4.5 लाख ही ऐसे हैं जो पूरे जीते जी मरते
माना शरीर भी नहीं छोड़ते और बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अपने को पूरा ही मारते हैं, सब तो बिल्कुल नहीं रह जाता, एक संकल्प मात्र भी अपना नहीं रह जाता। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, अंत में यही स्टेज हो जाती है। औरों की ये स्टेज नहीं बनती है, कितनों की 4.5 लाख की बनती है। बाकी उनके संग में रंगने वाली जो विशेष आत्माएं जो प्रवेश करके कार्य करती है, उनकी भी स्टेज तो ऐसी बनती है। 16 कला संपूर्ण तो बनती है, 84 जन्म लेने वाली तो बनती है, क्योंकि उनका एक जन्म त्रेता में बढ़ जाएगा। त्रेता में कितने जन्म होंगे उनके? 13 जन्म होंगे। पक्के देवताएं तो कहे जाएंगे, लेकिन अपना शरीर नहीं होता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो जीते जी मरे। पर काया प्रवेश करके जीवन लिया, वो तो काया किसकी हुई? पराई काया हुई ना। तो उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ अनुभव उनका है जो अंत करते हैं इस दुनिया का। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो वो हुए सबके भारतवासी, बाकी तो कुछ न कुछ प्रभावित ही हो जाते।
प्रवेश करके
एक जन्म पूरा मिलता है, लेकिन उनका एक जन्म तो त्रेता में बढ़ा ना, संगम का तो नहीं हुआ अपने शरीर से। तो जरूर यही हैविन होगा, यही मैंने कहा इस भारत में ही हैविन होता है। वो हैविन का अनुभव करती है, ऐसा संगठन तैयार करते हैं जहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण हो। कितनी सहज बातें हैं, परंतु ग्राम अनुसार समझते नहीं नहीं समझते हैं। सब तो बाप आते हैं समझाने, बाप कब तक समझाने के लिए आते हैं? जब तक बेसमझ है। पुकारते भी है बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वो आकर के हमें दो। ऐसे नहीं कि प्रेरणा से कोई नॉलेज आ जाएगी, या प्रेरणा से डायरेक्शन मिल जाएंगे, या प्रेरणा से आकर नई दुनिया बना देंगे, पतितों को पावन बना देंगे। तो कहते हैं पतितों को पावन बनाने आओ, पर कहते हमारा दुख हर कर सुख दो। इतना ही नहीं कि सिर्फ हम पतितों को पावन बना दो, पति से मन बुद्धि आत्मा को पावन बना दो, मनन चिंतनशील बना दो, आकारी स्टेज वाला फरिश्ता बना दो। इतना ही नहीं कहते, पवित्र फरिश्ता बना दो। इतना ही नहीं कहते, क्या कहते हैं? दुख हर कर सुख दो। हम सुख चाहते हैं तो सुख तो शरीर बिगड़ अनुभूत नहीं हो सकता। तो कहते हैं हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु ये पता नहीं कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वो बाप है तो जरूर बाप की रचना हुई होगी। निराकारी बाप की रचना कैसी होगी? निराकारी रचना होगी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वातनवासी देवता है, वो हुई निराकारी रचना। फरिश्ताई रचना, और देवताएं साकार होते हैं या फरिश्ता होते हैं? भारत में फरिश्ताएं नहीं गाई जाती, जिसको विदेशों में गायन है। भूत प्रेतों की उपासना या अच्छी नहीं मानी जाती, या किसकी उपासना अच्छी मानते हैं? देवताओं की। तो देवताएं गाय और पूजी जाती, तो जरूर साकार देवताओं की रचना हुई है, संगमी को करी हुई है। फादर माना रचयिता, बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन कौन ठहरे? जिन्होंने फादर कहा, सिर्फ मुख से नहीं, हाथ से लिख करके नहीं सिर्फ, लेकिन दिल से कहा, तो क्रिएशन हो गई। क्रिएशन माना रचना बन गई बाप की। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी, क्रिएशन शब्द है तो उसका क्रिएटर भी कोई जरूर होगा। फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, स्वर्ग के सुखों की प्रॉपर्टी जो दुनिया में और कोई धर्म पिता दे नहीं सकता। तो ये तो कॉमन बात है, इसलिए ही मुझको तुम्हें व माता अच्छा पिता कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं आकर के बेहद का वर्षा देता हूँ, जो सुख का वर्षा शांति का वर्षा कोई और पिता नहीं दे सकता इस दुनिया में, कॉन्स्टेंट अविनाशी वर्षा, वो वर्षा मैं आकर के देता हूँ। इसलिए माता पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा ग्रस्ती हुआ ना, है कैसा ग्रस्ती हुआ, बड़ा ग्रस्ती कब हुआ, जब वर्षा दिया। अगर वर्षा न देंगे, काम न करे तो नाम बाप कैसे करेगा। शास्त्रों में जो भी नाम है, दुर्योधन, दुशासन, विदेश से, ये काहे के आधार पर नाम है, काम किया है तो नाम है। तो बाप ने भी बपौती का काम किया है, ऐसे ही नाम नहीं ले लिया, बुलाते भी है ये माता पिता आओ, आ करके पावन बनाओ। किसको कहती है माता पिता, आओ साकार को, साकार तो इसी सृष्टि का थे, आए कहाँ से, वो तो थे ही हमेशा एडम ही वो आदिदेव आदिदेवी आदम हुआ, जो सृष्टि के माता पिता है वो तो इस सृष्टि पर थे ही कि नहीं थे पहले से, फिर आए कहाँ से, किसको बुलाया, उस सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को साकार सृष्टि पर साकार बनने के लिए बुलाया कि आओ। किस रूप में आओ, माता के रूप में और पिता के रूप में, वो पिता के रूप में भी आता है माने पुरुष रूप में भी आता है और स्त्री चोले में भी आता है, आकर के पावन बनाओ। अब फादर है तो मदर भी गलत न कैसी होगी, है दोनों में जो रुद्रमाला के दोनों फर्स्ट मार्के हैं उनमें माता का पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन, शरीरदारी की आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा, शिव ज्योति बिंदु बाप के रूप में वर्षा देने वाला है। लेकिन वर्षा पहले किसको देता है, बच्चों को देता है कि माता को देता है, है? पहले किसको मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, बाप के जीते जी तुम माँ के ऊपर अधिकारी बनना चाहते हो, माँ के भी ऊपर हो जाओगे। बाप पहले वर्षा देता है, सारे घर परिवार की कंट्रोलिंग किसके हाथ में सौंपता है, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधाई कुटुम्ब है परिवार है उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में सौंपेगा, माता के हाथ में। तो माता कंट्रोलर बनती है, असुर संघारिणी बनती है, असुरों का संघार करने वाली और देवताओं का संवर्धन करने वाली, इसलिए कहा जाता है वैष्णो देवी। ऊपर मंदिर है अमरनाथ का, बाप का, और उससे नीचे मंदिर है दोनों पहाड़ों पर, वो ऊंची स्टेज में, वो थोड़ी नीची स्टेज में, क्यों, क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए थोड़ा कुछ न कुछ असुरों के नजदीक भी पहुंचना पड़ता है। तो सुप्रीम सोल बाप जो कि सूर्य के रूप में उदित होता है संसार में, उससे अंधकार डायरेक्ट नहीं टकरा सकता, सूर्य से भी पहले अंधकार वाली आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, आखिरी आत्माएं, व्यर्थमयी बुद्धि वाली आत्माएं पहले किससे टकराती, अंधेरा पहले सूर्य से टकराता है या उसकी लालिमा से टकराता है, ऊषा पहले उदित होती है। तो मदर फादर बिगर रचना नहीं हो सकती। ये फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं? वो बिल्कुल नई बात है, लौकिक दुनिया की तरह नहीं रचते हैं। कैसे रचते हैं? एडाप्ट करते हैं बच्चों को। बच्चे कहते हैं तुम मेरे बाप हो, और बाप कहता है तुम मेरे बच्चे हो। जब तक दोनों तरफ से ये एडाप्शन पक्की न हो जाए, तब तक पक्के एडाप्टेड हुए बच्चे नहीं हुए। बाप को भी ये विश्वास हो जाए ये मेरा बच्चा है, और बच्चे को भी ये निश्चय बैठ जाए कि ये मेरा बाप है। तो सिर्फ लिखे के देने की बात नहीं है, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए होता है। लेकिन दिल से माने, सिर्फ दिमाग से नहीं। तो ये फिर यहाँ रचना बाबा कैसी रचते हैं, ये बिल्कुल नहीं बात है। यहाँ भी बच्चों बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है कि बाबा रचना कैसी रचते देवताओं की, ब्राह्मणों को देवता कैसे बनाते हैं, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह के बुलाते हैं। और यहाँ भारतवर्ष में क्या है विशेषता, यहाँ मात पिता कह करके बुलाते, तुम मात पिता हम बालक थे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। माने माता पिता दोनों की कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं भारतवासियों को, जो घनेरे सुख और किसी जन्म में दूसरी आत्मा को नहीं मिलते। कब मिलते हैं? प्रतीत के दूसरे जन्म में भी ऐसे घनेरे सुख नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अतिय सुख के घनेरे सुख संग मिले सबको मिलते। तो सिर्फ भारत में ही गॉड और मदर दोनों को मानते, विदेशों में सिर्फ फादर को मानते। क्या वो निवृत्ति मार्ग वाले हो गए? और यहाँ प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए। यहाँ भी अगर कोई ऐसे है जो सिर्फ मदर मदर से लाते, जय हो माँ काली, क्या जय माता दी, सारी रात माता माता चिल्लाएंगे और बाप का बुद्धि में ध्यान नहीं, तो मदर का विधवा है, विधवा माता की पूजा करते हैं क्या? भारतवर्ष में कौन सी माता की पूजा होती है? सदमा को मान्यता है, विधवा की कोई मान्यता मान्यता नहीं है। खत्म खो नहीं, नीची दृष्टि से देखते हैं। यहाँ दोनों है मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। दूसरा वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वास्ता मिलता है क्या? जो सिर्फ गॉड फादर को याद करते हैं उनको सिर्फ वर्षा मिलता है मुक्ति का। सिर्फ गॉड फादर वो समझते हैं कि हम आत्मा बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु, वो माता का रूप नहीं हो सकता, स्त्री चोला नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा है सब पुरुष, तो आत्माओं का बाप भी पुरुष। स्त्री चोले की बात कब होती है? जब साकार में आए
तो
एडम ईव को सिर्फ कहते हैं, लेकिन कोई गायन नहीं है खास उन शास्त्रों में, सिर्फ नाम मात्र है कि एडम ईव हुए, लेकिन उनके बारे में कोई विशेष हिस्ट्री कुछ पता नहीं है। ऐसे नहीं है कि उनको आदि पिता समझ करके कोई उनकी पूजा करते हो या कोई विशेष मान्यता देते हो, नहीं, मान्यता कोई भी अपने धर्म पिताओं को देंगे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को देंगे, जबकि उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के भी बापों का बाप कौन हुआ सो कहते हैं, लेकिन पहचानने की जानने की कोशिश नहीं करते। तो सिर्फ फादर कहने से कौन सा वर्षा मिलता है? सिर्फ मुक्ति का वर्षा मिलेगा, यानी दुख दर्दों से छुटकारा तो हो जाएगा, लेकिन शरीर में रहते सुख प्राप्त करें वो नहीं हो सकेगा। वो आते भी पीछे है कौन? जो सिर्फ मुक्ति का वर्षा लेते कब आते हैं? द्वापर में आते हैं, और सत्युग त्रेता में ऐसी आत्माएं नहीं है जो बाद में आती है, मुक्ति का वर्षा लेती है, कुछ न कुछ समय वहाँ ऊपर बैठी रहती है, बाप से डायरेक्ट शरीर रहते सुख का वर्षा नहीं लेता थी एक जन्म सिर्फ कोई के एक जन्म कम, कोई का दो जन्म कम, कोई के चार जन्म कम, कोई के बीस जन्म कम नंबर वार है जो मुक्ति धाम में पड़े ही रहते हैं, मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो बाप का डायरेक्ट वर्षा है शरीर रहते रहते अतिद्र सुख की अनुभूति करना, वो पूरी अनुभूति वो नहीं कर पाते। स्वर्ग के जो गनेरे सुख गाये हुए हैं वो उनके अनुभव में नहीं आते। ये तो सब जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्ध धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। ये सीरी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए झोले के बाजू में रखना चाहिए। कौन से चित्र को? सीरी के चित्र। अगर कोई को प्रश्न पैदा हो जाए तो उसको गोले के चित्र पर समझाया जाए कि देखो ये तो आते ही ना आधे के बाद कौन और धर्म वाले, यानी बीच में आते हैं आदि वाले नहीं है। तो यज्ञ के आदमी जो शूटिंग हुई है उसमें जो दूसरे धर्म के आधार मूर्त हैं वो कब आएंगे? बीच में ही आते हैं, ऐसे नहीं कि वो आदि वाले हैं, आदि वाले नहीं है। और आदि में रहे भी होंगे सत्संग में, तो जब परीक्षाएं आई तो किसका आधार ले लिया है? कमजोर देहधारियों का आधार लेकर के बाप को धोखा धोखा दे देते। तो सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। कलयुग में है 550 करोड़ मनुष्य और सतयुग में है 9 लाख। ये भी सतयुग आदि में लिखना चाहिए। क्या सतयुग का आदि में कितने मनुष्य ज्यादा से ज्यादा? 9 लाख। तो कहाँ तक हुआ सतयुग का आदि? जब तक 100 वर्ष का संगम पूरा हो तब तक हुआ सतयुग का आदि। और बाद में सामान्य सतयुग शुरू हो जाता है, उसे सतयुग का आदि नहीं कहेंगे। यानी और बाकी को आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला नहीं कहेंगे, वो सब कन्वर्ट होने वाले। जो 100 वर्ष के संगम युग पूरा होने के बाद जो आत्माएं शरीर धारण करेंगी, जन्म लेंगी, वो पक्के देवताएं नहीं है, कच्चे हैं, इसलिए कन्वर्ट हो जाते। बाप की डायरेक्ट संतान नहीं है। तो सतयुग में है 9 लाख, ये है 9 लाखा हार, परमात्मा के गले का हार बनने वाली आदमी, उनको सतयुग आदमी लिखना चाहिए। नहीं अंत में कहा लिखना चाहिए? उनको लिखना चाहिए सतयुग के आदि में 9 लाख। और लिखा कहा है पीढ़ी में? पीढ़ी में 550 करोड़ आबादी अंत में बताई हुई, लेकिन आदि में भी तो लिखना चाहिए ना। लिखत से सब काम लेना होता है। क्या ऐसे नहीं कि जब दिल से ही बाप मानना है, है? दिल को ही दिल से राहत होती है तो लिख करके क्यों देवे निश्चय पत्र या समर्पण पत्र या पोता मिल, है? लिखने की क्या दरकार है? ऐसे ही जमानी जवान खर्चे मुंह से बोल देंगे, आज बोल देंगे कहीं हमने तो पहले भी बोला तो प्रूफ कुछ भी नहीं। एक लिखा और 100 बक्का दुनिया में बराबर माना जाता है, इसलिए लिखत से सब काम लेना है। धन बाप एक एक की दिल को जानते हैं कि बच्चा कहाँ तक सच्चा है, फिर है तो नंबर वार ना, नंबर का पता कैसे चलेगा? इसलिए क्या करना चाहिए? लिखाए लेना चाहिए। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना एक बाप का ही काम है। बुद्धि का परिवर्तन ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप ही में इतनी ताकत है जो बुद्धि का परिवर्तन करे। ये पाठशाला है, अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब छू रही होगा पाठशाला में, तो मैथ भी चाहिए, ठीक है? वो समाधि विद्या तो काम में नहीं आएगी। मैथ किसी मनुष्य भेद समझ जाएंगे। ये तुम्हारे मुख्य मैथ से हैं कौन से? त्रिमूर्ति बोला झाड़ तेरी लक्ष्मी नारायण, कितना विस्तार से समझाया जाता है। चित्र तो चार ही है लेकिन इनमें ज्ञान की विस्तार बहुत है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। क्या ज्ञान का विस्तार इन चार चित्रों में बहुत है मुख्य चित्रों में, फिर भी जो पत्थर बुद्धि है वो समझते नहीं। क्यों बने पत्थर बुद्धि है? पत्थर बुद्धि क्यों बने? हाँ, बाप के बनते हैं और फिर बाप को धोखा देते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, ज्ञान की गहराई को समझ नहीं सकते, क्योंकि विचारी ज्ञान लेने वाली बन गई। पत्थर बुद्धि अहिल्या गाई हुई ऐसे नहीं कि कोई धार या पत्थर बन जाते। क्या बन जाते? पत्थर बुद्धि बन जाते, कठ बुद्धि बन जाते। बाप ने समझाया प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी सामने रखो किसी के तो पहले कौन सा चित्र समझाना चाहिए? है त्रिमूर्ति का चित्र। क्यों? हाँ, क्योंकि त्रिमूर्ति के चित्र में ही बाप का परिचय है, और कोई चित्र में बाप का परिचय नहीं है। कितना जाती तो कौन सा है बाप? जो नई दुनिया स्थापन करने वाला है, जो हमको सुख का वर्षा देने वाला है, जो हमारी बुद्धि को परिवर्तन कर देता है, है? त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति बाप कहें? है? ब्रह्मा को भी बाप कहें, शंकर को भी बाप कहें। ब्रह्मा से क्या वर्षा मिला? आज में ब्रह्मा से वर्षा मिला? कैसा वर्षा मिला? बाप से तो क्या मिलना चाहिए? वर्षा मिलना चाहिए ना? तो मिला स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए जिसको वर्षा मिला। सदस्यों को भी मिला, विदेशों को भी मिला, पाठकों को भी मिला, तो दुआताओं को भी मिला। ये तुम्हारा बाबा है, वो दादा है, ये त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। क्या कहा? त्रिमूर्ति पर तीन मूर्तियों पर ही समझाना चाहिए। यह तुम्हारा बाबा है और यह तुम्हारा दादा है। दादा माने बड़ा भाई, और बाबा माने बाप का भी बाप। तो ज्ञान कैसे दें, वर्षा कैसे दें? जो बाबा है वो वर्षा कैसे दें? बड़े भाई से तो वर्षा मिलता नहीं, भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनको वर्षा बाबा से नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा दादा है, यह तुम्हारा बाबा है, वर्षा बड़े भाई से नहीं मिलता है, किससे मिलता है? बाबा से वर्षा मिलना है। तो भारतवासियों को मिलना है, तुम तो विदेशी हो, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, दूसरे देश में कन्वर्ट होने वाले हो, तुमको वर्षा नहीं मिलना है। परम पिता परमात्मा का रूप हुआ ब्रह्मा, अगर तीन धर्मों की स्थापना नहीं हुई तो ब्रह्मा को फिर परम पिता परमात्मा कहीं नहीं कह सकते। स्पष्ट होना चाहिए देवताएं कौन बने, क्षत्रिय कौन बने, और ब्राह्मण की लिस्ट में कौन कौन आए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं, ही क्यों लगाया? माना क्षत्रिय धर्म और देवता धर्म की दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा स्थापना नहीं होती। ये है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ नाम नहीं है, शिव यज्ञ नाम नहीं है, क्योंकि शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप बिंदु का ही नाम है। उसका नाम रुद्र नहीं है, उसका नाम सिर्फ एक ही है, बिंदु का नाम। क्या मेरी आत्मा का ही नाम है शिव, जो कभी बदलता नहीं है। जब नाम बदलता है तो काम होता है, उसका काम बदलने के आधार पर नाम बदलता है। तो काम तो साकार में आके करेगा या बिंदु फुदक फुदक काम करेगा। साकार में आकर के काम करता है तो ढेर नाम पड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे जाती पाठ तो शिव बाबा बजाते हैं आकर। तो उसको कहा जाता है रुद्र ज्ञानी यज्ञ। तो त्रिमूर्ति में रुद्र किसको कहा जाए? रुद्र माना रौद्र रूप जिसने धारण किया, किसको कहा जाए? शंकर ही रौद्र रूप धारण करने वाला है, क्योंकि सारी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा गाया हुआ है। तो सब थर थर कांपते हैं, थर्रौटा मचता है। तो रुद्र हुआ ना, यज्ञ के आदि में भी वो रुद्र बना था। क्या यज्ञ के आदि में भी समेत अम्मा के सब बच्चे थर्रौटे में आ गए? ब्रह्मा कहाँ भाग के चले गए? सिंध हैदराबाद छोड़ के ही चले गए। जब तक उस बाप का साकार में सहयोग मिला, तब तक सिंध हैदराबाद में सत्संग बड़े आराम से चलता रहा, कोई विरोध नहीं हो सका। और जब वो विरोधी बन गए तो ब्रह्मा बाबा को छोड़ के भाग जाना पड़ा। कहाँ भाग जाना पड़ा? कराची में। तो चीन कराई गई। तो रुद्र है, आदि में भी रुद्र था, इसलिए अगस्त वाणी में कहा कि स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो प्रज्वलित करने वाले कौन? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। और बत्ती मार के जो यज्ञ हैं वो देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। तो रुद्र यज्ञ पहले होता है जिसमें शिव की पूजा होती है शालिग्रामों के साथ, दूसरे यज्ञ बाद में रचे जाते हैं। यज्ञ रुद्र का पहले रचा जाता है, दूसरे देवताओं के जो यज्ञ है पूजन है वो बाद में होते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अब तुम पूजा लायक नहीं हो, है ना? संगम युग में तुम पूजा लायक नहीं हो, फूल चढ़ाने लायक नहीं हो। शिव बाबा तो गायन लायक भी है और पूजन लायक भी। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव बाबा तो गायन लायक भी है और पूजन लायक भी। गायन किसका होता है? बिंदी का होता है। जब साकार बनता है तब गायन होता है, साकार बनता है तो गायन होता है। तो ऐसे नहीं कि वो लिंग है सिर्फ बिंदु है, नहीं, लिंग और बिंदु दोनों दिखाए जाते थे। बिंदु है शिव की, सुप्रीम सोल की यादगार, और लिंग है साकार की यादगार, जितने शरीर रहते कर्मेंद्रियों से परे की स्टेज को धारण किया, जैसे कर्मेंद्रियों की विस्मृति हो गई, ऐसा पार्ट बजाया। कान है लेकिन सुनते हुए न सुनना। दुनिया कितनी भी ग्लानी करती है, चाहे दुनिया करे चाहे ब्राह्मण परिवार के बच्चे ही करे, तो बोलते मेरे बच्चों ने जितनी मेरी ग्लानी की है उतनी और दुनिया वालों ने नहीं की है। तो कान है कि नहीं है? है तो कान से तो ग्लानी सुनाई पड़ेगी। हाँ, कान होते हुए भी जैसे कि नहीं है, आँख होते हुए भी बच्चे वो सामने खड़े हैं, बात भी कर रहे हैं, ग्लानी भी करते हैं, उनको समझते हैं कि ये निश्चय बुद्धि नहीं है, अंदर से काले हैं और बाहर से गोरा बन करके दिखा रहे हैं, साफ दिल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाप को साफ दिखाई पड़े। लेकिन तो बाप उन बच्चों को भी देखते, लेकिन देखते हुए भी जैसे नहीं देखते। ऐसे ही सभी इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों से संसर्ग संपर्क में तो आते हैं, संबंध में तो आते हैं, क्योंकि आखिरी फिर भी बच्चे हैं, लेकिन जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी उनसे उपभोग किया या न किया वो बराबर हो जाता है। इसलिए बोला कि देखते हुए न देखो, सुनते हुए भी न सुनो ऐसी स्टेज को धारण करो। तो शिव बाबा का गायन भी है और पूजन भी है, और तुम्हारा सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं होता। माने शालिग्रामों का गायन है और पूजन है, लेकिन देवताओं का पूजन भी है, गायन भी है, शिवलिंग का पूजन भी है और गायन भी है, लेकिन तुम्हारा माना किसका? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण सिर्फ गायन लायक हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। कहाँ की याद है? संगम युग में तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, तो तुम समझो हमारे ऊपर फूल चढ़ाए जाए, पकड़ के तो ना चढ़ाए नहीं अपने ऊपर। बाबा तो कहते हैं कि तुम पूजन लायक नहीं हो, तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ाए जा सकते, तुम हार ग्रहण नहीं कर सकते, तुम फूल ग्रहण नहीं कर सकते। कौन से फूल? चैतन्य या जड़? है चैतन्य। तो फिर समर्पण समारोह कहाँ होता है? मंगलम होता है किसके ऊपर? देवताओं के ऊपर या शिव बाबा के ऊपर? भावना जो होता है किसके ऊपर है? फूल अर्पण किस पर होते हैं? लोग शिव के ऊपर जाकर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? शिव बाबा पूजन लायक है तो अक धतूरा से पूजन क्यों करते हैं? देवताओं का पूजन फूलों से करेंगे, अच्छे अच्छे फूलों से, और शिव बाबा के ऊपर अच्छे फूल भी कोई चढ़ाएंगे तो कोई आप धतूरा चढ़ा देंगे आपको माना? करुआ फूल दुर्गंध छोड़ने वाला फूल, और धतूरा माना है कांटे नहीं होते हैं धतूरे फूल में, लंबा होता है, लंबे छेद वाला, विषैला होता है,
बिलपत्र।
हाँ बिलपत्र अलग बात है। तो विषैला फूल चढ़ाते हैं और शिव बाबा पर विषैले फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कोई कोई गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। तो क्यों चढ़ाते हैं? उन पर भी गुलाब के चढ़ाने चाहिए, ताकत दूर से क्यों चढ़ाते हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब देना चाहिए। अरे जो है जैसे हैं सब तेरे हैं, अगर बाप के बन गए तो कांटे भी क्यों न है तो वो भी क्या बन जाएंगे? फूल बन जाएंगे। ठीक है कोई कम कांटे हैं दुखदाई, कोई ज्यादा कांटे हैं दुखदाई, लेकिन कांटे से फूल तो सब बनने हैं ना, कि कोई रह जाएगा? सब बनेंगे। तो बाप समझाते हैं तुम सब कांटे थे, इस दुनिया में कोई फूल था ही नहीं। तो जब फूल मिलते ही नहीं है बाबा को तो क्या होता है? शुरू में है? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। ये किसने गीत गाया पहले पहले? ये गीत किसके दिल ने गाया? शिव बाबा ने गाया कि इस दुनिया में आया कांटों के जंगल में तो कांटे ही कांटे मिले, कोई फूल उसको मिला ही नहीं, तो क्या किया? कांटों से दोस्ती कर ली। हाँ भाई तुम्हीं से काम लेना है, उनसे फिर कोई सदा गुलाब कोई मोतिया बन जाती है। अरे वंडर हो गया, ऐसी सैंपलिंग तो कोई नहीं लगाता होगा जो कांटों से फूल बनाए दे। नंबर बार बनते हैं, कोई किराके के फूल भी बन पड़ते हैं, आपके के फूल बन पड़ते हैं। मैंने पहले फिर भी जब चढ़ाए गए थे तो अच्छे थे, है? फिर पूर्व जन्म का 63 जन्मों का हिसाब किताब उनका कोई ऐसा उधरता है? सूची हो रही है ना, रील खुल रही है ना। तो पहले फिर भी अच्छे थे और जब अर्पण हो गए तो और ही कांटे बन पड़े, आके के फूल बन पड़ते। पूरा बलि नहीं चढ़ते हैं, पूरा पढ़ते नहीं हैं, तो अक बन जाते, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़े, तो ऐसा भी टाइम हुआ है जब शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। एक जैसे फूल बाबा नहीं बनाते हैं, या एक जैसे फूल जो बनते नहीं है। बाबा को भल बना है सबके लिए, एक ही जैसा है, सबको अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन वो एक जैसे बनते नहीं है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबर वार है। कोई तख्त नसीन बनेंगे, कौन से तख्त नसीन? काठ के ऊपर बैठने वाले, काठ के तख्त पर बैठने वाले, जैसे वहाँ वहाँ रखा हुआ है अमृतसर में अकाल तख्त बनाया हुआ है ना, तो काय का बनाया है, काठ का बनाई हुआ है। तो कोई तो तख्त नसीन बनेंगे, काठ के तख्त की बात नहीं है, नहीं दोनों ही तख्त है, दिल तख्त भी है और साथ साथ अकाल तख्त भी है। ये भ्रकुटि ये क्या है? अकाली मस्को आत्मा का तख्त, आत्मा अकाल है, अकाल तख्त, और फिर बाप दादा का दिल तख्त भी है। तो कोई तो तख्त नहीं बने, यानी कोई तो जो आकाश तख्त नसीन नहीं बनते, वो फिर दिल तख्त भी नहीं बन सकते। दिल तख्त पर बैठने वाले नहीं बन सकते आकाश तख्त बने। आत्मिक स्टेज में रहने की जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, वो धन की स्टेज वाले हैं, वो फिर बाप के दिल तख्त पर भी नहीं चढ़ सकते। तो पहले क्या करना पड़े? पहले आकाश तख्त नसीन बने। अकाल तख्त नसीन आत्मिक स्टेज वाले जो बनेंगे, वो ही ज्ञान रत्नों के अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेंगे, क्योंकि अकाल तख्त पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। सतगुरु अकाल, अकाली होते हैं ना, तो वो तो अकाली मनुष्य बनते हैं। वास्तव में गायन किसका है? सतगुरु अकाल मूर्त शिव बाबा का गायन है, जो सतगुरु बन करके अकाल तख्त पर अस्त्र शस्त्र रखता है। ये अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। अकाल श्री अकाल, श्री श्री अकाल नहीं, सत श्री अकाल। अकाल माने जिसको कोई काल न खाए, स्थूल बात नहीं है। काल नहीं खाए माना जिसको निश्चय बुद्धि से कोई अनिश्चय बुद्धि न बनाए सके। तो सत्य नसीन कोई बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, और कोई नहीं समझा सकता। ये भी पहचान है बाप की, क्या इन बातों का अर्थ बाप ही समझ ही सकते हैं। भक्ति मार्ग कितने लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं है। भक्ति मार्ग का पसारा बहुत है, लेकिन समझ कुछ भी नहीं। सतयुग में देवी देवताएं थे, कलयुग में तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा, नहीं तो सत्य के आज में सिर्फ देवता ही देवता है। सतयुग में सब सत्य और कलयुग में सब सब झूठे। तो झूठे को सच्चा किसने बनाया? अपने आप बन जाते हैं क्या? जरूर कोई तो निमित्त बना होगा, जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया। तो बाप आकर के ऐसा कर्म सिखलाते हैं, कैसा कर्म? जिससे मनुष्य से देवता बने, ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी बुद्धि गुण धारण करके देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे? क्योंकि उनको तो ऊपर से उनके पिछाड़ी आना है, उनके पीछे पीछे जो भी आएंगे वो तो पीछे पीछे आएंगे ना, तो वो सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं बस। वो धर्म पिताएं जिनके पीछे आत्माएं उतरती हैं, वो सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। कौन? देहधारी धर्मगुरु मनुष्य गुरु, वो सिर्फ इतना सिखाते हैं पवित्र रहो बस। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो कोई है नहीं, ऊपर से उनकी पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म चार हैं, कौन कौन से? देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन, जो धर्म स्थापन करते हैं। उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। शास्त्र माना
शासन करने वाला विधान तो मुख्य है चार धर्म, बाकी सब हैं छोटे छोटे धर्म, वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना है, तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। कौन कौन से? देवताओं का, श्रीमद भगवत गीता, और इस्लामियों का कुरान शरीफ बनता, और बौद्धियों का धर्मपद। धर्मपद से बन करके बिगड़ के हुआ धर्मपद, और क्रिश्चियंस का बाइबल। तो ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, कब का? अभी संगम युग का है। वो लोग आते हैं ब्राह्मण देवताएं नमः, तो उन ब्राह्मणों को समझाना है। वो लोग आते हैं गाते हैं क्या, ब्राह्मण देवताएं नमः, तो उन ब्राह्मणों को समझाना है। तो परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर के ब्रह्मा मुखवंशावली रचते हैं, तो वो ही सच्चे ब्राह्मण, बाकी तुम सब तुम झूठे ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मणों को समझाना है? दुनियावी ब्राह्मणों को है? ब्राह्मणों की संगति की दुनिया नहीं है, ऐसे ब्राह्मण है जो ये समझते हैं कि ब्रह्मा जब चले जाते हैं तो हम ब्राह्मण बने रह जाते हैं। क्या समझते हैं? दुनिया से जब ब्रह्मा चला गया तो भी हम क्या बन के रह गए? परंपरा अनुसार हम ब्राह्मण बने रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। सच्चे ब्राह्मण कौन? जब ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा का मुख होता है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भी होते। ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भी नहीं। तो उन ब्राह्मणों को समझाना, क्या समझाना है? परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं, वही सत्य ब्राह्मण। क्या रचते हैं? ब्रह्मा की मुख वंशावली। किसका बच्चा कौन, फिर उसका बच्चा कौन, फिर उसका बच्चा कौन, सात और आठ को नारायण की डायनेस्टी बताई जाए। अवली में ना लाइन, जो पंडे लोग होते हैं ना तीर्थों में, जो तीर्थयात्री पंडे, तीर्थ यात्रा कराने वाले पंडे होते हैं, वो अपना चौपड़ा लाते हैं। क्या करते हैं? वो अपनी सारी वंशावली तुम्हारी बाकी बता देंगे दरवाजे पर, सारे खानदान की हिस्ट्री, तुम्हारे बाप को, तुम्हारा बाप को, तुम्हारा, तुमको नहीं पता होगा, और उनकी चौपड़ी में सब लिखा हुआ होगा। तो असली पंडा कौन है? वो तो है झूठे पंडे। असली पंडा बनता है शिव बाबा, और पंडे की औलाद बनते हैं पांडव। तो तुम बच्चे हो असली ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। वो सब ब्रह्मा के पास सब की लिस्ट है, सब वंशावलियों की। अगर वो लिस्ट नहीं देता है कि कौन फर्स्ट नारायण, उसका बच्चा कौन दूसरा नारायण, कौन तीसरा नारायण, कौन चौथा नारायण, तो ब्रह्मा नहीं हुआ, असली ब्रह्मा नहीं हुआ। तो सूचना हो रही कि सतयुग में सात नारायण होंगे, लेकिन ये भी बताना पड़े वो कौन होंगे। हाँ, तुमको पता हो गया तो मान ले, अगर पता हो गया तो मान ले कि हम इस्लाम धर्म के फाउंडेशन हैं। तो तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, उनसे कहो, क्या कहो कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुमने तो झूठा नाम लगा रखा है बोर्ड का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तुम तो जानते ही नहीं प्रजापिता कौन होता है, पिता कौन होता है, माता कौन होता है, तुम्हें यही फर्क का पता नहीं। ये भी नहीं जानते कि माता स्त्री चोले में होती है और पिता पुरुष चोले में होता है। तुम तो बिंदु को ही कह देते हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अरे बिंदु माता बनता भी है, वो तो बिंदु बिंदु आत्मा का सिर्फ क्या है, पाप है, वो माता नहीं। जब चोले में प्रवेश करता है तो माता बनता है। फिर मुरली में बताया भी दिया ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है, परंतु तन कोई डब्बा बोलोगे अब तन पुरुष का है तो माँ का कैसे हुई? तो मम्मा को निमित्त बनाई दिया, माना ओरिजिनल माता बोधी नहीं है, बोधी क्या है, ब्रह्मा की बेटी है, तो जरूर ओरिजिनल माता कोई और है। ब्रह्मा अगर माता होती तो उसको सीधी माता के रूप में, देवी के रूप में जय माता की पूजा की जाती और दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा रख दिया जाता। जब पूजा करते हैं नवरात्रियों में तो जय माता जी का जब गायन करते हैं तो कोई दाढ़ी मूंछ वाला रखते हैं क्या? नहीं, किसका रूप रखते हैं? जगदम्बा का रूप रखते हैं, स्त्री चोला रखते हैं। तो जरूर ऐसा कोई स्त्री चोला हुआ है, जिसकी मान्यता हुई है, जिसका पूजन हुआ है।
अपना काम तो निकाल रहा है,
किस तरह से
माँ का प्यार कर दिया है ब्रह्मा के तन से।
लेकिन वो तन से जो पार्ट बजाया है वो माँ के रूप का पार्ट संपन्न नहीं हुआ। माँ बच्चों से दब तक दब करके तब तक ही रहती है जब तक उसके ऊपर बाप का साया नहीं होता। माँ का कोई बच्चे हाथ फेर करेंगे जो बाप के कंट्रोल को मानते नहीं। बाप जब तक जीवित है और बच्चे माँ का हाथ फेर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो समर्थ बाप है, सर्वशक्तिवान बाप इस शक्ति पर आता है। तो माँ का कार्य पूरा नहीं हुआ। क्यों? कोई पुरुषार्थी ऐसे होते हैं, कोई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा तटका लगाओ तो फट पड़ते। तो फटने वाला कपड़ा हुआ। अब कपड़ा कैसा चाहिए? ऐसा कपड़ा चाहिए जो तटका भी मारते जाए और धुलते भी जाए, मजबूत हो। तो तुम उन ब्राह्मणों से कहो तुम हो सूत्र संप्रदाय। बिगड़ पड़ेंगे, अगर बिगड़ नहीं पड़ेंगे तो जवाब दो, तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? मुरली में पूछा है प्रश्न, तुम अपने को ब्रह्मा मुख बन जाओ, ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है बताओ? कहेंगे सूक्ष्म वतन। और तुम कहाँ हो? कहेंगे साकार वतन। अरे ये तो कोई बात ही नहीं, तुम्हारा बाप सूक्ष्म वतन है, तुम साकार वतन। जहाँ बाप होगा वहीं बच्चा पैदा होगा। सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो लेकिन तुम ब्रह्मा मुखवंशा वाली ब्राह्मण हो नहीं। किंतु ब्रह्मा मुखवंशा वाली की दो पहचान बताई। एक बताई जो ब्रह्मा मुख की बात न माने वो है आपका ब्रह्मा कुमार। माना शूद्र, कभी शूद्र बन जाता है कभी ब्राह्मण बन जाता है। तो ब्रह्मा मुख की बात मानते हो तुम, मुरलियों की सब बातें मानते हो कि एक को मानते हो दूसरे की नहीं मानते हो? अगर ब्रह्मा मुख की बात न माने तो ब्रह्मा मुख वंशा वाली ब्राह्मण भाई नहीं। दूसरी बात फिर दोनों तरफ लागू होती है। दूसरी बात, अगर ब्रह्मा मुख वंशा वाली ब्रह्मा के बच्चे हो तो तुम आपस में भाई बहन थे। अगर आप अपने अंदर अनुभूत करते हो कि हम भाई बहन बन चुके है तो जैसे भाई बहन का आपसी प्यार होता है, भाई बहन को ससुराल से बुलाने के लिए लाता है, रास्ते में कहीं रुकना पड़ता है धर्मशाले में एक कमरे में, तो रुक सकता है ना कि डरेगा है? ये तो नहीं डरेगा कि हमसे कोई कुकर्म ना हो जाए। अगर डरेगा तो वो सच्चा भाई नहीं है, शूद्र संप्रदाय। तो यहाँ भी ऐसे भाई बहन बना कर बन करके दिखाओ, ये अनुभूति पक्की हो जाए कि हम ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन। तो तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, हम तो प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। क्या हम प्रैक्टिकल में बन रहे हैं और तुम सिर्फ कहलाने वाले हो, बनते नहीं हो? परंतु वो अर्थ ही नहीं जानते हैं। क्या कहते हैं? किस काम से गए?
ऐसे दुनियावी हो गए। हम तो पक्के भाई बहन हैं, हम पक्का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम कच्चा कर दे। तुम्हें डर रहता है कि हम संग संग रहेंगे, संग संग सुनाएंगे तो हमको क्या लग सकता है। बाबा से कहाँ है तुम्हारा बाबा? दिल्ली का एक साकार एक निराकार में कोई दुर्व्यक्ति बनी है? एक करोड़पति हो, एक सड़क का भिखारी हो, ये प्रवृत्ति बन सकती है? कभी प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं, प्रवृत्ति तब होती है जब दोनों समान हो। तो आप को नहीं जानते, ब्रह्मा भोजन जब आते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ करके ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते, परंतु अर्थ नहीं जानते क्या? ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, जिसने आकर के ब्रह्मा भोजन कर लिया ऐसा भोजन देवताओं को ही नसीब नहीं होता। देवता ही करते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए। अरे उसके भोजन के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं। वो ब्रह्मा का भोजन कौन सी रसोई में बन रहा है तो बताओ है? हाँ नहीं, जो भी ब्रह्मा की भोजन की ब्रह्मा है बड़ी अम्मा, तो ब्रह्मा की रसोई जो भी है बड़ी माँ की, उस रसोई में अम्मा देखने भालने वाली होनी चाहिए कि नहीं है? आप कह रहे हैं उन ब्राह्मणों से पूछो, ये किसकी बात हो रही? उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम ब्रह्मा का भोग लगाते हो, ब्रह्मा भोजन कहते हो, लगाते तो शिव बाबा को भोग है, लेकिन तुम ब्रह्मा भोजन कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा जो है जो भोजन बनवाने या बनाने वाला है वो चाहिए ना, शिव बाबा का भंडारा है और भोजन किसका है? ब्रह्मा का, जिसने बनाया उसी का भोजन। बच्चे किसकी है? बाप की। बाप ने बच्चे रचना रचे रचे तो बाप के बच्चे हुए, तो भोजन किसने बनाया? जो चिन्ह पर तो दिल पर, बाप के दिल पर कौन बैठता है पहले है? बाप का दिल पर कौन बैठता है पहले? नई दुनिया बनती है तो दिल ही बाप का दिल बनता है। क्या बनता है? बाप का दिल बनता है। तो जो बाप का दिल है वो तो अम्मा ही होगी ना, बाप की दिल किसके ऊपर गई पहले? अब बच्चों को ऊपर पहले चली गई, अम्मा बाद में आई है? पहले तो माँ के ऊपर दिल गई है, तो दिल ही है बाप का दिल, और जो बाप का दिल है वही वास्तव में माँ बनती है, वही जगत की माँ है। जब दिल भी रोती है तो सारा जगत रोता है, जब दिल्ली सवारी जाती है तो सारे जगत में हलचल होता है, जब दिल्ली कब्रिस्तान बनती है तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती है, दिल्ली कब्रिस्तान बनती है तो सारी दुनिया परिस्तान बन जाती है। तेरे वाले सर्व का भला। तो संस्कृत में बहुत से लोग पढ़ते हैं ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं, परंतु आप नहीं जानते।
ब्राह्मण से पूछो तो तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे? पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रखी। ब्राह्मण कर रहा हूँ जब पहले ब्रह्मा हो, अगर ब्रह्मा है तो ब्राह्मण है, ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं। तो सच्चे ब्राह्मण तुम बच्चे हो, वो ब्राह्मण सच्चे बच्चे नहीं है ब्रह्मा के, लेकिन तुम ब्रह्मा के सच्चे बच्चे हो, और वो ब्रह्मा के झूठे बच्चे हो। क्यों? कारण क्या बताया? क्योंकि उनका ब्रह्मा पास्ट में हो गया, वो कहते हैं सृष्टि के आज में ब्रह्मा था नहीं। और बाबा कहते हैं कि अगर ब्राह्मण हो तो अभी भी तुम्हारा ब्रह्मा होना चाहिए, जो सच्ची रचे नहीं, सच्ची जब तक नहीं हुई है तो ब्रह्मा का पाठ कैसे खिलाफ होगा? अब भगवान ने भी क्या बोला? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ, तो पाठ सूक्ष्म मतलब बनता है क्या? पाठ कहाँ चलता है? यह सूक्ष्म मतलब रास्ता है जिस तुम को काट चलेगा ना, तो पूछना पड़े तुम्हारा ब्रह्मा का है
आधी बात है, उलट कर्म कर रहा हो तो क्या कहते हैं? तुम भगत हो, माना तुम ज्ञानी? ज्ञानी नहीं हो, बाप समझाने तो देगा ना कि तुम भक्ति मार्ग का चिंता कर रहे हो अपने जीवन में, या ज्ञान मार्ग के आधार पर कर रहे हो? क्यों? क्योंकि अगर 84 दिन में लेने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है, देवता बनना है, तो भक्ति जिनकी उड़ जानी चाहिए, जिनकी भक्ति पूरी उड़ेगी नहीं बुद्धि में से, कर्मा में से, वाचा में से, वो भक्ति के संस्कार रह जाएंगे तो उनको सही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाप समझानी देते रहते हैं कि तुम भक्त हो अभी या ज्ञानी हो। क्योंकि बच्चे अगर भूल करती हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? बाप का नाम बदनाम होगा, तो बाबा का नाम बदनाम होगा। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण आप शिक्षा देते हैं, कभी हो इनसे कोई भूल हो जाती इनसे। आठ पाठ बजाने वाली माता है, उनसे अगर कोई भूल हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए ड्रामा में न्यूज है, उससे भी फायदा निकलेगा। किससे? जो इनसे भूल होती है उससे भी फायदा निकलेगा। जानने की बात चल रही थी ना कि बाबा किसी से कह देते हैं तुम भगत हो, तो बाबा कहते हैं मान लो इसको ब्रह्मा ने किसी को डांट भी दिया, तो ये डांटने की जो नूद है उसको तुम ऐसे नहीं समझो, इन्होंने क्रोध क्यों किया? अरे माता पिता का काम क्या है? बच्चों को सुधारना। तो इनसे भी अगर कोई भूल हो जाती है तो ये ड्रामा में नूद है, कल्याणकारी है, इससे फायदा निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है ना। दम्मा, दम्मा बड़ा बच्चा नहीं हुआ, दम्मा कहेंगे तो बड़ी अम्मा हो गई, बच्चा कहाँ हुआ? मैंने कृष्ण की सोल की तरफ इशारा किया, कृष्ण की सोल बड़ा बच्चा है, कहाँ है? माँ के रूप में पाठ बजाने वाला सारा मदार इस पर है, सारा मदार इस पर है। अगर पहला पत्ता ही श्रेष्ठ न बना तो और सब पत्ते कैसे बनेंगे? जाड़ में तो कीड़ा लग गया पहले से ही, वो कीड़ा सब पत्तों को खा रहे, तो सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, क्या माना? माता की भी बात माननी चाहिए, ऐसे नहीं हम नहीं मानेंगे। अगर उल्टा भी बोला तो क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। क्योंकि बाप समझने वाला बैठा हुआ है ना, छोड़ गया नुकसान की होगा। चाहे माता के डायरेक्शन को फॉलो करो, चाहे बाप के डायरेक्शन को फॉलो करो, लेकिन दोनों में नुकसान नहीं होगा। हर बात में कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण भी ड्रामे में था, भूलें तो सबसे होती रहेंगी, क्या भूलें तो सबसे होती रहेंगी, क्यों सबसे होती रहेंगी? इसलिए होती रहेंगी सबसे भूलें कि तेरे धाने सब का भला दो दान, तो जो सुनती ज्ञान, तो जिसको सब कुछ अर्पण ही करना है, सब कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तो वो भूल किस बात की होगी? अगर कोई नुकसान कर भी दिया, जिसकी जो चीज है उसने कुछ नुकसान कर दिया, तुम्हारा क्या गया? कुछ नहीं है, तुम कहा ये मेरा जो शिव बाबा आते हैं, पहले दुष्ट की बात चाहिए किसको देखे? जगदम्बा को, तो जब सारी दुष्ट की बात चाहिए उसको ही देगी तो नुकसान किसका होगा?
तो पूरा होगा ना, तो दोनों की सबसे होती जाएंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना जरूर है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और कौन अनुरूप है ही कल्याणकारी, इसमें कुछ भी अकल्याण हो नहीं सकता, परंतु अंत में कल्याण होगा, सबका कल्याण करना है, सबको सबक की जरूरत है, अब सबकी कयामत का समय है, पापों का बोझ यहाँ सबके सिर पर है, कोई ऐसे न समझे कि हमारे ऊपर पापों का बोझ नहीं है, पापों का बोझ सबके ऊपर है, इसलिए कहा कि सबसे जाति तो कर्म भोग इनके ऊपर होना चाहिए, इनके ऊपर हाँ माता के ऊपर होना चाहिए, बाप बाप दादा के ऊपर सबसे जाति आना चाहिए, लेकिन योग बल से कंट्रोल बना रहता है, चुपचू होता रहता है, तो पापों का बोझ सबके सिर पर है, इनके सिर पर जाति, मेरे बहाने सर्व का भला, मैं सब बच्चों का बोझ किसके ऊपर है, माँ के ऊपर, बाप तो फिर भी बाहर चला जाता है, सारी समान घर की किसको कमी होती, माता जी सजा मिलने में देरी नहीं लगती है, सबका हिसाब किताब बाप आकर के चुप चुप कर देगा, ऐसे नहीं समझो विदेश में चला गया या बाप विदेशी बन गया बाहर चला गया अभी घर में नहीं है, लेकिन सबके हिसाब किताब चुप चुप होने, या तो हिसाब किताब भी बड़ी तेजी से बनते, दुनिया में कोई पाप कर्म करो तो एक गुना, और यहाँ कोई पाप कर्म किया जाए तो 100 गुना, तो बेसिक नॉलेज, और अब एडवांस नॉलेज है तो पाप कर्म भी एडवांस बन जाता है, मन में संकल्प आया और पाप बना, अगर स्थाई रहा तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो 1000 गुना लाख गुना हो जाएगा, चलता है तो हिसाब किताब तो सबका चुप होगा, मिलने में सजा मिलने में देरी नहीं लगेगी, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती, क्योंकि आप सेकंड में पापों की सजा नहीं कर सकते, जैसे काशी करवट में हाल होता है, काशी करवट खाते हैं तो 7 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद काशी करवट खाते हैं बहुत सजा अनुभव करती है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिल गए काशी करवट खाने वाले, नहीं सिर्फ पिछले पापों का हिसाब किताब किसी करते हुए, क्या वो तो बाकी मारे की काशी करवट है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में असली है काशी करवट, ये है यहाँ बाप के ऊपर अर्पण हो गए तो ऐसे नहीं तुम्हारा पा होगा तो तुम्हारी संगति पहले हो गई अम्मा की रह जाएगी बाद में, नहीं सदगति तो किसी की नहीं होती है, सबकी अंत में सदगति होनी है एक सेकंड में, लेकिन हिसाब क्या है कि पिछला एक बार अगर आपा हो गए तो जो पिछला बोझ आया वो सब चुपचू हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो बीच में तो कोई वापस नहीं जा सकता, जो शरीर भी छोड़ रहे हैं वो भी अभी कोई परमधाम वापस नहीं जा सकते, उनको भी इसी शत्रु की रंगमंच पर कोई न कोई न प्रवेश करके पार बदलना पड़ेगा, बल ज्ञान सेकंड का है परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना, है शत्रु की सोल भी ब्रह्मा की सोल भी अभी क्या कर रही है, बहुत पढ़ाई पढ़ रही है, तो रोज शिवबाब की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वो ही आकर के पढ़ाती, मैंने कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, ज्ञान की नाली कौन आकर देता है, शिव बाबा देती रोज, कृष्ण तो देहधारी है, क्या कृष्ण देह को धारण करने वाला देहधारी है, पुनर्जन्म में आते रहते हैं, जो ज्ञान में आएंगे तो निश्चय निश्चय बुद्धि भी होते रहेंगे, देह वाली माना, देह को धारण करने वाला, माना देह के भान में आने वाला, तो कृष्ण की सोल अभी भी देह के भान में आती है, और देह के भान में आएगी तो भूल होगी कि नहीं होगी, होगी। और तो ब्रह्मा का ही मुंह पकड़ो, इसने ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों करती है, तो ऐसे नहीं, पुनर्जन्म में आते हैं कृष्ण भी, पुनर्जन्म में आना माना निश्चय निश्चय के चक्र में वो आत्मा अभी भी आ रही है, तो जब वही आत्मा निश्चय निश्चय के चक्र में आ रही है जिसके ऊपर सारा मदार है, तो तुम हमेशा के लिए निश्चय बुद्धि का आदि बन जाओ, बाबा कैसे चल जाओ, बाबा को अजन्म है माना, बाबा कोई जन्मान के चक्र में नहीं आता, बाबा को निश्चय और अनिश्चय बुद्धि का जन्म मरण होता नहीं है कि निश्चय बुद्धि बन जाए तो जिंदा हो गया और अनिश्चय बुद्धि बाबा बन गया तो उसकी मौत हो गई, ये तुम बच्चों की होती है, बाबा को सदैव एक रस स्त्रीय है, अटल है, हिलने वाला नहीं है, जिनको करना नहीं है वो तो जरूर जीवन डाल, क्या कहा है जीवन कौन डालना है, जिनको पवित्रता की पढ़ाई घर व्यस्त में रह के पवित्र बनने की नहीं पढ़नी है, जो है जन्म जन्मांतर के सन्यासी, वो क्या करेंगे, वो जीवन डालेंगे, वो जानते हमारे अंदर कमजोरी हम नहीं रह सकते, तो क्या करेंगे, वो जीवन डाल जाएंगे, दूसरों को उल्टा सिखाएंगे, योगी में गुरु पढ़ेंगे, अवलाव पर अत्याचार होंगे, सब कुछ हो रहा है, कल पहली बात तो कैसे हंगामा करते हैं, किस प्रकार से हम जिन चित्रों को समझाते हैं आखिर क्या कर देते हैं, गुस्से में आकर उन चित्रों को फाड़ देते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे, पांडव भवन भी किया है, क्या किया जल दिया, अजय तो चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अंदर में समझती है ये बाबू ग्रामा की, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, क्या जब ऐसे ऐसे काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी कि तुम रूहानी गवर्नमेंट से तुम्हारी चल रही है तो तुम जिस्मानी गवर्नमेंट के पास क्यों गए, उस पुलिस को रिपोर्ट आदि करनी पड़ेगी, अंदर में जानते हैं कल पहले जो हुआ था सो ही होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं, नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू क्या फिर दूसरा बन जाएगा, क्या क्या धोबी कौन है, यहाँ धोबी कौन है, क्यों बाबा अब धोबी के घर से छू के भाग गई, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, फिर दूसरा बन जाएगा, ये तो नहीं तो दूसरा क्यों, बाबा ने कह दिया जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो, 8 दिन प्रदर्शनी करनी है तो क्या करो, साल भर के लिए नहीं करो, 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो, कोई अच्छा आदमी होगा तो वो चार्ज भी नहीं लेगा, मैं इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, सुंदर ऐसी चित्र बन जाएंगे, अरे जल भी जाएंगे तो क्या होगा, नए ऐसी चित्र बन जाएंगे, कदम कदम में तुम्हारी कदम, तुम्हारे कदम 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 सेकंड सेकंड बहुत गोली गोली, तुम कदम पति बनते हो 21 जन्मों के लिए, बाबा से वर्षा लेते हो तो कितना अच्छी रीति करना चाहिए, समझाना चाहिए, क्यों क्योंकि तुम इतने जन्मों के लिए सदन पति बनते हो, वो इसी जन्मों के लिए नहीं बनेंगे, तो तुम इसी जन्म के लिए बनते हो। बाबा से बनता नहीं तो ना बाप चल में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात ही नहीं, तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं, तुम कम कितनी बड़ी और प्रजा जी देखो कितनी साहूकार बनती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम इस चीज बनने के लिए। क्या है सोर्स ऑफ इनकम? नाली बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं, यह है सोर्स ऑफ इनकम का इसकी जनरेशन। यह है मंत्री को देवता बनने की पाठशाला। क्या उन पाठशालाओं में, उन पाठशालाओं में कौन सी पाठशालाओं उन्हें कथा करते तो ब्राह्मणों की पाठशालाओं में कोई मनुष्य के देवता नहीं बनाया जाता। वहाँ क्या बनाया जाता है? सूर्य से सिर्फ ब्राह्मण को बनाया कहा जा सकता है कि बनाई जाती है, जो पवित्रता का बिल्कुल धारण करते हैं, लेकिन कोई देवता देवता नहीं बनते। लेकिन यहाँ मनुष्य को देवता बनाई जाती, देवता बनने की पाठशाला है। पढ़ाता कौन है? बाप। तो ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अगर बाप है, ये निश्चय है कि बाप हमको मनुष्य से देवता बनाए, तो उनको मनुष्य गुरु मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई नहीं कराई रहा है, तो नशा भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा हिंदी तरीके से किसी बच्चे को तुम नाचते बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।